नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। महिला आरक्षण और परिसीमन पर लोकसभा में चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी से बनेगा विकसित भारत। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा नेता शिवेश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। विधान परिषद की रिक्त हुई एक सीट के लिए उपचुनाव 12 मई को होगा, 30 अप्रैल तक किया जा सकता है नामांकन। और जनगणना 2027 की राज्य में कल से होगी शुरुआत। पहले चरण में स्वगणना और मकानों की सूची बनाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। संसद के विस्तारित बजट सत्र में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण पर चर्चा के लिए आज से 3 दिवसीय विशेष अधिवेशन शुरू हो गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि ये भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल है। श्री मोदी ने कहा कि इस विचार मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश को नई दिशा दिखाएगा।
हम भारतीय सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि ये भारत का सांस्कृतिक संकल्प भी है।
हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है।
श्री मोदी ने विपक्ष से महिला आरक्षण को राजनीतिक रंग नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि देश की आधी आबादी हमारी नीयत को देख रही है।
उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। आज एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश की आधी आबादी नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये सुनिश्चित करना इस संशोधन विधेयक का लक्ष्य है।
हम चाहते हैं कि विकसित भारत, जिसके नीति निर्धारण में सात अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कोई भी होगी, जिम्मेवार कोई भी होंगे।
प्रधानमंत्री ने सदन को विश्वास दिलाया कि इस निर्णय प्रक्रिया से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन का जो अनुपात पहले से चला आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकार रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी।
इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 सदन में प्रस्तुत किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए विधेयक को वापस लेने की मांग की। बाद में मत विभाजन के बाद महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा कल भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिला शक्ति को उनका अधिकार सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर उन्हें और अधिक सशक्त बना रहे हैं।
मोदी जी की सरकार इस देश की सभी महिला मांगों के लिए 33% का आरक्षण ला रही है, पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की सभी बहनों को आरक्षण देकर उनको मजबूती देने का काम कर रहे हैं, पूरी तरह बिहार, बिहार की जनता, बिहार की सरकार उनके साथ है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी महिला आरक्षण विधेयक पर स्पष्टता से अपनी बात रखी है। श्री पासवान ने कहा कि अब विधेयक को रोकने का विपक्ष का बहाना सफल नहीं होगा।
बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा, देखिए हकीकत है हम लोग यहाँ कोई श्रेय लेने के लिए नहीं, हमारी आधी आबादी को उनका हक अधिकार देने की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कैंडिडली पीएम साहब और बोल सकते थे। विपक्ष हर बार किसी न किसी विषय को बहाना बनाकर उसकी आड़ में इस विषय को, नारियों के अधिकार को, वुमेन रिजर्वेशन को सिर्फ और सिर्फ लटकाने का काम कर रहा है।
महिला आरक्षण विधेयक को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। गोपालगंज की जिला कार्यक्रम प्रभारी और भाजपा नेता सुनीता सिंह ने कहा कि यह देश को सशक्त और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज संसद में नारी शक्ति वंदन बिल पेश हुआ है, इससे महिलाओं को बहुत मजबूती मिलेगी और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक की सफर महिलाएं तय कर पाएंगी। प्रधानमंत्री जी के वजह से हम लोगों को इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन देखने को मिल रहा है।
इन संशोधन विधेयकों पर राज्यसभा में भी चर्चा होगी। इधर हरिवंश नारायण सिंह को निर्विरोध रूप से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। श्री हरिवंश लगातार तीसरी बार इस पद पर निर्वाचित हुए हैं। गौरतलब है कि जदयू नेता हरिवंश की राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। बिहार से नवनिर्वाचित 4 सांसदों ने आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई।
मैं उपेंद्र कुशवाहा, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं नितिन नवीन, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर तथा भाजपा नेता शिवेश कुमार ने भी राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को ही सदन की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद की रिक्त हुई 1 सीट के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस सीट के लिए चुनाव 12 मई को होगा। एक रिपोर्ट।
विधान परिषद की रिक्त हुई सीट के उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने बताया है कि उपचुनाव के लिए अधिसूचना 23 अप्रैल को जारी की जाएगी। 30 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। 2 मई को नामांकन की जांच की जाएगी जबकि 4 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार 12 मई को सुबह 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन मतगणना की जाएगी। समाचार कक्ष से निधिश्री।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पदभार संभालने के बाद प्रशासनिक कार्यों में तेजी आ गई है। मुख्यमंत्री के पास फिलहाल गृह मंत्रालय समेत 29 विभागों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने आज सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री चौधरी ने नगर विकास विभाग की परियोजनाओं और कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने आज तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब पहुंचकर मत्था टेका और राज्य में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज जल संसाधन विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता और विधायक माधव आनंद ने राज्य में शराबबंदी की व्यापक समीक्षा किए जाने की मांग की है। श्री आनंद ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर इस संबंध में अपनी बात रखी। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि शराबबंदी लागू करना ही काफी नहीं है। श्री आनंद ने कहा कि इस कानून को लागू हुए 10 साल हो गए हैं और जमीनी हकीकत को देखते हुए इसके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। राज्य में कल से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू होगा। इस चरण के तहत नागरिक स्वयं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। ये चरण 1 मई तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
स्वगणना की इस प्रक्रिया में वेब पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार के मुखिया का नाम और किसी भी एक सदस्य के मोबाइल नंबर से पंजीकरण किया जा सकता है। स्वगणना के बाद संबंधित व्यक्ति को एक आईडी प्राप्त होगी, जिसे प्रगणक के घर आने पर उन्हें उपलब्ध कराना होगा। 2 मई से मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू होगी, जो 31 मई तक चलेगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी विवरण एकत्र किए जाएंगे। राज्य सरकार ने लोगों से जनगणना कार्य में सहयोग की अपील की है। इधर गृह मंत्रालय ने कहा है कि जनगणना के लिए पहली बार डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एकत्र की गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और इसका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। समाचार कक्ष से निधि श्री।
हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न जिला प्रशासन ने जनगणना की तैयारी पूरी कर ली है। भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पारदर्शिता और सुगमता के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों को पहले 2 दिनों के दौरान सबसे पहले अपनी स्वगणना कर लेने का निर्देश दिया गया है। शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद ने लोगों से अपील की है कि स्वगणना में स्वेच्छा से भाग लें और 34 प्रकार की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें। कैमूर के जिलाधिकारी नितिन कुमार के निर्देश पर जिले में गहन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बिना हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सारण जिले के हरिहरनाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत मीणा बाजार चौक से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा और स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। रोहतास के जिला और सत्र न्यायाधीश ने 9 मई को जिले में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान कई न्यायिक पदाधिकारी भी उपस्थित थे। कटिहार में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से सोलर मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला आरक्षण और परिसीमन पर लोकसभा में चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी से बनेगा विकसित भारत। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा नेता सिवेश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। विधान परिषद की रिक्त हुई 1 सीट के लिए उपचुनाव 12 मई को होगा। 30 अप्रैल तक किया जा सकता है नामांकन। और जनगणना 2027 की राज्य में कल से होगी शुरुआत। पहले चरण में स्वगणना और मकानों की सूची बनाई जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।